तारीख 14 सितंबर, दिन सोमवार। दिन भर के साथ मैं रेहान फजल। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम मोहर।
दरअसल बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि न तुम हारे न हम जीते, और ये चीजें पहले से तय थी।
1965 के भारत पाक युद्ध पर विशेष श्रृंखला की 14वीं कड़ी में देखेंगे कैसे एक भारतीय पायलट ने गलती से अपना विमान पाकिस्तान में उतारा।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह, वो इसके पीछे लगा, कम्युनिकेशन उन्होंने किया कि अपने अंडर कैरेज लोअर कर, नहीं तो ये मैं मिसाइल फायर कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। और वो जो से करंट देख रहा था अपने शीशे में, इसके पीछे जहाज लगा हुआ है, उसने अपनी अंडर कैरेज खोल दी।
होगा अमरीकी ओपन टेनिस का विश्लेषण भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। सोमवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनके मुताबिक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 और केंद्र सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने सीमा पर नियंत्रण बढ़ाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रिया ने कहा है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सीमा पर 2000 सैनिकों को भेजा जाएगा। नीदरलैंड्स, स्लोवाकिया और पोलैंड ने भी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया है। पोलैंड की प्रधानमंत्री इवा कोपाच ने कहा है कि उनकी सरकार 12000 प्रवासियों के कोटे का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करेगी। वहीं ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा, पुलिस अधिकारियों के एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी जिम्मेदारी हंगरी और यूरोप में ईसाई संस्कृति को बचाना है। हंगरी 1000 साल पुरानी ईसाई संस्कृति वाला देश है। हम हंगरी के लोग दुनिया में हो रही प्रवासियों की हलचल से अपने देश को बदलने नहीं देना चाहते। इसके लिए हमने मेहनत नहीं की है। हमने विश्व युद्ध व्यवस्था में बदलाव और आर्थिक संकट इसलिए नहीं झेले हैं। हमने हंगरी और यूरोप की अलग तस्वीर सोची थी। हम शांति और सुरक्षित तरीके से जीना चाहते हैं। हम किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं चाहते हैं। ये थे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्व सीरिया में 2 कार बम धमाकों में करीब 20 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी टीवी के मुताबिक हास के शहर में हुए धमाकों में ढही इमारतों के मलबे में और शवों की तलाश जारी है। हास के शहर पर सरकारी सुरक्षा बलों और कुर्द लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट भी शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में नाटकीय ढंग से प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। नए नेता मालकम टर्नबुल अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। लेबर पार्टी के सांसदों ने मालकम टर्नबुल को 54 वोटों से अध्यक्ष चुन लिया, जबकि टोनी एबॉट को 44 वोट हासिल हुए। सोमवार को टोनी एबॉट को चुनौती दिए जाने की खबरें आई थी, जिसके तुरंत बाद उन्होंने चुनाव करवाने की बात कही थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समारावीरा ने कहा है कि सरकार श्रीलंका के गृह युद्ध के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा देने की योजना बना रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। सोमवार को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि समझौते के मुताबिक विधानसभा की 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनके मुताबिक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 और केंद्र सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बंटवारे से क्या संकेत मिलते हैं, बता रहे हैं जुबैर अहमद।
भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसे 170 के करीब सीटें चाहिए थीं, मगर 160 पर पार्टी संतुष्ट है। प्रभात खबर अखबार के संपादक राजेंद्र तिवारी कहते हैं,
दरअसल बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि न तुम हारे न हम जीते, और ये चीजें पहले से तय थी कि लगभग थोड़ा बहुत मांझी को थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी है कि कल शाम को मांझी को बोल दिया गया था कि अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है, आप तय कर लीजिए।
160 सीटों पर लड़ने का मतलब ये भी हुआ कि सरकार बनने के समय बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये अपनी सहयोगी पार्टियों पर निर्भर करे, जैसा कि राजेंद्र तिवारी कहते हैं।
भाजपा की रणनीति ये है, सरकार बनने की स्थिति जब आए तो बीजेपी की डिपेंडेंसी उसके अपने सहयोगी दलों पर ना रहे, तो इसलिए वो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जैसा कि केंद्र में है।
बीजेपी अगर संतुष्ट है तो एक दो भागीदार पार्टियां असंतुष्ट। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी पासवान की तरह 40 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 20 सीटें ही दी। अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए कहा,
हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है, मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
दरअसल ना तो पासवान और ना ही मांझी के पास इतना कोई विकल्प था। पिछले साल आम चुनाव में श्री पासवान को मोदी लहर से काफी फायदा हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में भी सहयोगी दलों को इस बात का एहसास है कि अगर उन्हें कामयाबी मिलेगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही मिलेगी। प्रधानमंत्री एनडीए में शामिल चारों पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, इन पार्टियों का साझा चुनाव घोषणा पत्र भी होगा। अमित शाह कहते हैं,
आज समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, वो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बिहार और मजबूत करे और उसको एक कदम आगे ले जाए। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने विकास की योजना बनाई है वो भी लेकर, हमारा साझा घोषणा पत्र और चारों पार्टियों का घोषणा पत्र लेकर बहुत कम समय में हम आपके सामने उपस्थित होंगे।
प्रधानमंत्री बिहार में अब तक कई चुनावी रैलियां कर चुके हैं, अगले कुछ हफ्तों में वो कुछ और रैलियां करने वाले हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट सत्ताधारी पार्टी के नेता के पद से बेदखल हो गए हैं। पार्टी के भीतर नेता पद के लिए हुए चुनाव में वो मैल्कम टर्नबुल से चुनाव हार गए हैं, जो अब नए प्रधानमंत्री होंगे। इस चुनाव में मैल्कम टर्नबुल को 54 वोट मिले, वहीं टोनी अबॉट को 44 वोट ही मिल सके। जल्दी ही टोनी अबॉट प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
चुनाव परिणामों की घोषणा इस तरह हुई। पार्टी नेतृत्व के चुनाव में मैल्कम टर्नबुल और टोनी एबट के बीच प्रतिस्पर्धा थी। मैल्कम सफल रहे, उन्हें कुल 100 वोटों में से 54 वोट मिले हैं और टोनी एबट को 44 वोट। उपनेता का चुनाव जूली बिशप और केविन एंड्रयूज के बीच लड़ा गया। जूली बिशप की जीत हुई है और उन्हें 70 वोट मिले हैं, जबकि केविन एंड्रयूज को 30 वोट मिले हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के भीतर नेतृत्व के लिए हुए चुनावों के परिणाम की घोषणा हो रही थी। इस चुनाव परिणाम के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री टोनी एबट का प्रधानमंत्री पद छिन गया है और मैल्कम टर्नबुल अब नए प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले सोमवार की सुबह एक पत्रकार वार्ता के दौरान मैल्कम टर्नबुल ने कहा था कि अगर टोनी एबट ही पार्टी के नेता बने रहते हैं तो गठबंधन सरकार आने वाले चुनावों में हार सकती है। वहीं प्रधानमंत्री टोनी एबट ने चुनावों से पहले एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि वे लिबरल पार्टी की चुनौतियों से निपटने के लिए इन चुनावों को लड़ेंगे। उन्होंने अपनी जीत की उम्मीद जताई थी।
The Prime Ministership of this country is not a prize or a plaything.
इस देश का प्रधानमंत्री होना कोई इनाम नहीं है और न ही ये कोई खेल की चीज है। ये एक ऐसी चीज है जिसे ऑस्ट्रेलियाई आवाम के वोट से पाया जाता है। आज शाम पार्टी के नेतृत्व और उप नेतृत्व के लिए चुनाव होने हैं। मैं भी इस चुनाव का एक उम्मीदवार हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी ही जीत होगी। ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट के शब्द। जल्द ही टोनी एबट प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह मैलकॉम टर्नबुल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2013 के बाद से टर्नबुल ऑस्ट्रेलिया के चौथे प्रधानमंत्री होंगे। पिछले आम चुनावों से ठीक पहले 2013 में लेबर पार्टी की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड को इसी तरह पार्टी नेतृत्व के चुनाव में केविन रूड ने हराकर प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। इससे पहले 2010 में गिलार्ड खुद प्रधानमंत्री केविन रूड को प्रधानमंत्री पद से हटाकर प्रधानमंत्री बनी थी।
ऑस्ट्रेलिया में नए प्रधानमंत्री का चुनाव। मिस्र के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके सैन्य बलों ने भूल से 12 पर्यटकों को चरमपंथी समझकर मार दिया है। मारे गए लोगों में मेक्सिको के नागरिक भी शामिल हैं। कम से कम 10 लोग घायल भी हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि घटना की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं एक बार फिर रोहित जोशी।
मिस्र के गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा सेनाएं एक हेलीकॉप्टर के जरिए सड़क से दूर रेगिस्तान में इस्लामिक चरमपंथियों की तलाश कर रही थी और इसी दौरान उसने प्रतिबंधित क्षेत्र में 4 गाड़ियों पर गोलियां दाग दी। मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 12 पर्यटक मारे गए हैं और कम से कम 10 घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये पर्यटक 4 बसों में सवार थे और देश के पश्चिमी रेगिस्तान के वहत इलाके में एक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे। मंत्रालय का कहना है कि इस घटना की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है, लेकिन एक स्थानीय टूर गाइड ने मंत्रालय के इस बयान को खारिज किया है और कहा है कि ये काफिला गैर प्रतिबंधित क्षेत्र में ही था और ऊंचाई से नज़ारा देखने के लिए सैंड डूस इलाके में चढ़ा था। वहीं बीबीसी से बात करते हुए एक दूसरे स्थानीय स्रोत ने कहा है कि इन पर्यटकों के काफिले के साथ पुलिस दल भी मौजूद था। इस स्रोत का कहना है कि उसने इस हमले में बच गए ड्राइवर से बात की थी। उधर मेक्सिको के अधिकारियों ने 2 मैक्सिकन पर्यटकों के मारे जाने की पुष्टि की है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक्यू पेना नियटो ने इस हमले की निंदा की है और मिस्र की सरकार से इस मामले की गहराई से जांच की मांग की है। एक बयान जारी करते हुए मेक्सिको के अधिकारियों ने कहा है कि मिस्र में मेक्सिको के राजदूत ने उस स्थानीय अस्पताल का दौरा किया है जहां घायल लोगों को रखा गया है। उन्होंने वहां मेक्सिको के घायल पर्यटकों से बात भी की है। पश्चिमी रेगिस्तान का वहत इलाका पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है, लेकिन इस इलाके को चरमपंथियों के छुपने की जगह भी माना जाता रहा है।
मिस्र में सुरक्षा बलों ने भूलवश पर्यटकों पर गोली चलाई। उत्तर प्रदेश के बागपत में खाप पंचायत के बलात्कार के कथित फरमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 2 दलित बहनों के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब इन बहनों, उनके एक भाई और परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ ही बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। मामले की पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
इस उलझे मामले की सिलसिलेवार कहानी शुरू हुई करीब 1 महीना पहले, जब बागपत की 2 बहनें दिल्ली आईं और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके इलाके की खाप पंचायत ने उनका बलात्कार किए जाने का फरमान दिया है। उनके मुताबिक ये फरमान दरअसल उनके एक भाई के ऊंची जाति की एक लड़की के साथ भागने की सजा है। स्थानीय पुलिस और अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार कर दिया, पर अब उस ऊंची जाति की लड़की ने ही इन बहनों, उनके भाई और परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। बागपत के SP शरद सचान।
रेप का एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई थी, तो कोर्ट ने उसमें इनके खिलाफ FIR करने का आदेश दिया है। इसकी FIR की गई है, उसमें इन परिवार में इनके जो लड़का है, इनके भाई, इनके फादर और इनकी सिस्टर, इन सबके नाम लिखे उन्होंने अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन में।
बहनों के वकील राहुल त्यागी के मुताबिक ऊंची जाति की लड़की ने बलात्कार की ये शिकायत दबाव के चलते की है और इसके तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट में मेरठ पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर ने एफिडेविट देकर ये बताया है कि ऊंची जाति की लड़की और बहनों के भाई अपनी मर्जी से भागे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में बहनों के परिवार में किसी के भी खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बहनों के वकील राहुल त्यागी।
याचिका में हमने CBI जांच की मांग की थी और लड़की जिससे जिसके साथ वो भागा था कहीं उसको अत्याचार ना किया जाए आपकी फैमिली के द्वारा, तो उसको प्रोटेक्शन, उसको भी प्रोटेक्शन सीख कर रहे थे आप। उस लड़की ने एक लड़के के और लड़के के पूरे परिवार के ऊपर रेप का केस लिखा दिया है दबाव में, उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि कोई अरेस्ट नहीं होगी आज, कल वो लड़का लड़के के परिवार से मिलेंगे और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है।
लेकिन बहनों के भाई पहले से ही जेल में है। दरअसल बहनों के सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही उनके भाई और ऊंची जाति की लड़की को वापस गांव ले आया गया था और इसके बाद भाई को प्रतिबंधित ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत से जमानत होने के बावजूद वो इस वक्त जेल में है। बहनों के वकील के मुताबिक गांव में हो रहे कथित बहिष्कार की वजह से बहनों के परिवार को जमानत करवाने के लिए गांव से कोई जमानती नहीं मिल रहा। बीबीसी की टीम भी कुछ दिन पहले जब उस गाँव गई तो पाया कि पंचायत के फरमान या बहनों की दलील की पुष्टि करना बेहद मुश्किल है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इन बहनों का समर्थन कर रही है और इंटरनेट पर डाली उनकी याचिका पर दुनिया भर से हजारों लोगों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। 1965 के युद्ध में एक भारतीय पायलट ने पाकिस्तान में अपना मिशन पूरा करने के बाद भारत वापस आने के बजाय पाकिस्तान की ही एक बियाबान हवाई पट्टी पर अपना विमान उतार दिया था। क्या था ये पूरा मामला और किन परिस्थितियों में उसे ऐसा करना पड़ा था, सुनिए 1965 युद्ध की 14वीं कड़ी में। जब स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन एक सफल अभियान के बाद अपने नेट्स के साथ पठानकोट एयरबेस पर उतरे तो वो अच्छे मूड में थे, लेकिन उनकी खुशी उस समय काफूर हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके एक साथी ब्रजपाल सिंह सिकंद वापस नहीं लौट पाए हैं। उस जमाने में अधिकतर जहाजों में जीपीएस सिस्टम या रडार नहीं होते थे। पायलट्स बेस पर आने के लिए नक्शों या कंपास का इस्तेमाल करते थे। सिकंद अपने फॉर्मेशन से बिछड़ गए थे, उनके पास ईंधन कम था। उनको ऊपर से एक हवाई स्ट्रिप दिखाई दी और वो उस पर यह समझकर लैंड कर गए कि वो एक बियाबान भारतीय स्ट्रिप है। लेकिन सिकंद को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी, असल में वो पाकिस्तान की पसरूर हवाई पट्टी पर उतरे थे। उन्हें तुरंत युद्धबंदी बना लिया गया। उधर इस सबसे अनजान जब सिकंद पठानकोट एयरबेस पर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश में दो वैम्पायर जहाज भेजे गए। वो ऊपर से सिकंद के जहाज का मलबा ढूंढने की कोशिश करते रहे, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाने लगा था कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि सिकंद का नेट सीमा पार पाकिस्तान में पसरूर में उतर चुका है। फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान ने बीबीसी को बताया कि सिकंद का नेट गलती से पसरूर में नहीं उतरा, बल्कि उसे पाकिस्तान के एक स्टार फाइटर विमान ने जबरदस्ती पसरूर पर उतरने को मजबूर कर दिया।
स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह सिकंद ये इस नेट को फ्लाई कर रहे थे उस दिन, और जब पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर थे तो एक F-104 स्टार फाइटर जो था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्ला मेरा कोर्समेट था, हम ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग करते थे, तो वो इसके पीछे लगा और F-106 की परफॉर्मेंस और मिसाइल थी इसकी, तो कम्युनिकेशन उन्होंने किया कि अपने अंडर कैरेज लोअर करो नहीं तो ये मैं मिसाइल फायर कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, और वो जो उनसे सिकरण देख रहा था अपने शीशे में पीछे के, उसके पीछे जहाज लगा हुआ है, उसने अपनी अंडर कैरेज खोल दी और नियरेस्ट हमारा जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स होते थे उस पे ऊपर उसने कहा उधर लाया प्रोफेसर था, इसने क्या करना था बटन दबाना था और पैराशूट करके बाहर निकलता, जहाज को डिस्ट्रॉय होने देता, खुद कैद हो जाता।
सिकंद को युद्धबंदी बनाने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सात हातमी इस नेट को उड़ाकर पेशावर एयरबेस ले गए। उन्हें ब्रिटेन में अपनी ट्रेनिंग के दौरान नेट उड़ाने का अनुभव था। पाकिस्तान के उड्डयन इतिहासकार कैसर तुफैल कहते हैं,
सिकंद जो थे इनका जो मिशन था उसमें ये नेट फ्लाई कर रहे थे। इनका जो क्लेम है, जब लैंड किए उसके बाद ये पकड़े गए और उसके बाद फिर इनकी इंटरोगेशन हुई थी, इनका क्लेम था कि इनकी बेशुमार जहाज में मैलफंक्शन जो है एकदम हो गए, मसलन जो नेविगेशन कंपास होता है वो खराब हो गया, इनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट आ गया, इनकी जो फ्यूल सिस्टम था उसकी कुछ वार्निंग लाइट्स जो है वो ऑन हो गई, इनका रेडियो जो था उसने एकदम काम करना बंद कर दिया। तो ये जो चार पांच चीजें कही हैं वो एकदम हो जानी, हालांकि किसी ने इनके ऊपर कोई गोली वगैरह नहीं चलाई थी, जो उनके सिस्टम्स जो थे एकदम फेल हो जाते तो इसमें कुछ जो है शुबे की गुंजाइश है इनकी जो स्टेटमेंट थी कि ये तमाम सारी चीजें एकदम हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं भी पायलट हूँ, मैं भी जानता हूँ कि इस तरह की चीज जो है वो बहुत कम होती, बहुत ही रेयर है। वो हुआ इस तरह था कि उस वक्त ये अपनी जो मिशन थी किसी वजह से उससे अपने जो फॉर्मेशन मेंबर से उनसे अलग हो गए थे, और उसके बाद इन्होंने दोबारा अपनी पोजीशन असर्टन करने के लिए कि ये कहाँ पे हैं, तो गालबन चक्कर वगैरह लगा रहे होंगे। उस दौरान में पीएफ के जो F-104 थे जिनकी बड़ी दहशत थी क्योंकि वो बड़ा मॉडर्न एयरक्राफ्ट था, अपने वक्त से बहुत आगे था, वो उस वक्त पेट्रोल कर रहे थे, तो उस वक्त सिकंद की नज़र उस 104 पर पड़ी थी, जबकि F-104 जो था उसकी नज़र इस नैट के ऊपर नहीं पड़ी थी। नैट उनको सिर्फ बताया गया था कि इस तरफ नैट जो है वो एक चक्कर लगा रहा है और ये जो F-104 है ये उस नैट की तरफ आ रहा था, तो नैट ने F-104 को पहले देख लिया, और जो हमारे ग्राउंड पे जो रिडार कंट्रोलर थे वो रेडियो को भी मॉनिटर करते थे। हमारे पास फैसिलिटी थी जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स के पायलट की बातें सुन सकते थे, तो उसमें सिकंद ने कॉल दी थी अपने फॉर्मेशन मेंबर्स को कि भागो यहाँ से, F-104 आ गया है। ये जो है कि क्या वो डर गए या क्या हुआ, बहरहाल उनको नीचे एक एयरफील्ड नजर आई और वो वहां पे उन्होंने लैंड कर लिया। वो एयरफील्ड पसरूर की थी, सियालकोट के पास एक वर्ल्ड वॉर की डिसयूज छोटी सी एयरफील्ड थी। जहां तक 104 पायलट का ताल्लुक है, वो केमुला जो ओसी थे अपने स्क्वाड्रन के, उन्होंने देखा नहीं था, उनको डायरेक्ट किया जा रहा था, रिडार इस नैट की तरफ उनको ले जा रहा था, जिसको नैट ने पहले देख लिया और उसने अपनी लैंडिंग की तैयारी कर ली। तो इसमें जो थोड़ा सा डाउट था वो ये है कि क्या वो ये समझिए कि ये इंडियन एयरफील्ड है, ऐसा दुरुस्त नहीं है, इंडियन एयरफील्ड का नहीं था, उनको जो पहली एयरफील्ड नजर आई थी उसमें वो लैंड कर गए।
बाद में सिकंद ने कहीं लिखा कि पसरूर में गलती से लैंड करने के बाद उन्होंने दोबारा टेक ऑफ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन कैसर तुफैल इस थ्योरी पर सवाल उठाते हैं।
लैंड करने के बाद जो जेट फाइटर है वो दोबारा टेक ऑफ नहीं कर सकता, वो तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था, और वो इतनी छोटी स्ट्रिप है कि उसमें लैंड करने के बाद दोबारा इतना डिस्टेंस भी नहीं है, उसकी लंबाई इतनी नहीं है कि मसलन अगर आप 10,000 फुट या 9,000 फुट का जो आम रनवे होता है उस पर आप ये कर सकते हैं कि आप लैंड करें। लैंडिंग में तकरीबन 3,000-4,000 फुट इस्तेमाल हो गया रनवे और बाकी तकरीबन 4,000-5,000 फुट बाकी पड़ा है, तो उसमें आप उसी मोशन में आप दोबारा टेक ऑफ कर सकते हैं, जिसको टच एंड गो कहते हैं। लेकिन ये पसरूर की जो एयरफील्ड है इसकी तो लंबाई मुश्किल से 3,000 फुट की थी। ये वर्ल्ड वॉर के जमाने में जो स्पिटफायर और हरिकेन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट थे वो उनके इस्तेमाल के लिए, जेट फाइटर्स के लिए तो थी नहीं ये, तो उस पर जब इन्होंने लैंड किया है तो एक सिरे से चले थे और दूसरे सिरे पे जाके रुक गए थे, तो बाकी तो आगे रनवे अवेलेबल ही नहीं था जिसमें ये दोबारा टेक ऑफ कर सकते।
बीबीसी ने इस मामले पर सिकंद की टिप्पणी लेनी चाही तो उन्होंने ये कहकर बातचीत से मना कर दिया कि अब वो काफी वृद्ध हो चले हैं और उनकी याददाश्त ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन सिकंद के समर्थन में पीवीएस जगन मोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर में लिखते हैं।
हकीमुल्ला उस इलाके में भले ही उड़ रहे हों जहां ये नैट उतरा था, लेकिन पाकिस्तानी सूत्रों के अलावा इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि नैट को जबरदस्ती पसरूर पर उतरवाया गया। कैसर तुफैल ने एक दूसरे लेख में स्वीकार किया है कि हकीमुल्ला ने तब तक नैट को नहीं देखा था जब तक उन्होंने उसे पसरूर स्ट्रिप पर अपने ब्रेक शूट के साथ खड़े पाया।
इस पूरे प्रकरण के एक और गवाह थे अमृतसर रडार स्टेशन के विंग कमांडर दंडपाणी, उन्होंने जगन मोहन को बताया।
उनको उसी समय पता चल गया था जब सिकंद का विमान अपने मुख्य फॉर्मेशन से अलग हुआ था, लेकिन फिर वो उनकी रडार की स्क्रीन से गायब हो गया था। दंडापानी जोर देकर कहते हैं कि उस समय उन्हें रडार पर उस इलाके में कोई पाकिस्तानी विमान नहीं दिखाई दिया था। ये खबर आने के बाद कि एक नेट पाकिस्तान में साबुत उतार लिया गया है, पठानकोट एयरबेस के सारे नेट्स को ग्राउंड करके उनके रेडियो क्रिस्टल को बदला गया ताकि पाकिस्तानी भारतीय वायुसेना की फ्रीक्वेंसियों को डिसाइफर कर उन्हें सुन न सके।
गौहर अयूब खान ने एक और दिलचस्प बात बताई कि इस नेट को बाद में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया।
इसने पाकिस्तान को फर्स्ट क्लास एक जहाज दे दिया जो हमने बाद में ट्रेनिंग में यूज किया एज एनमी एयरक्राफ्ट, और जो हिंदुस्तान में नेट जहाज की तारीफ करते थे, हमने पाया कि ये इतना सुपीरियर जहाज नहीं है, इसमें बहुत बड़ी फ्लॉज है, और इसको अपना राइट अप जो इंडिया ने दिया है और कहा कि इतने हमने जो उनसे पाकिस्तान के जहाज मार गिराए, दैट वाज नॉट क्वाइट एक्यूरेट। अब यह है कि ट्रेनिंग और इसको एज एनमी एयरक्राफ्ट हम यूज कर रहे थे तो इस पे बर्ड स्ट्राइक हो गई, चिड़िया इसके कैनोपी के ऊपर लगी और टूट गई। हमें अब कैनोपी मिल नहीं रही थी, बर्तानिया से कोशिश की उधर से नहीं मिली, यूगोस्लाविया से कोशिश की वहां से नहीं मिल सकती। तो हमारे एयर अटैशे लंदन के करीब एक पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे थे तो एक और अंग्रेज आया, उसने गाड़ी खड़ी की और वो भी डाल रहा था। आपस में बातें हुई तो लगा कि ये एरोनॉटिकल जो कंपनी थी बेंगलोर में उसमें काम करता रहा नेट्स के ऊपर। तो हमारे एयर अटैशे ने कहा कि मुझे मुसीबत हो रही है, इस तरह कैनोपी नहीं मिल रही मुझे, कहीं से मुझे ढूंढ दो। उसने कहा मैं कर दूंगा, उसने बेंगलोर से निकाल के पाकिस्तान के हैंडओवर कर दी और उसको हमने रीफिट किया जहाज के ऊपर और बाद में उसको इस्तेमाल करना बंद किया क्योंकि बहुत पुराना हो गया था जहाज।
आज भी ये नेट पाकिस्तानी वायुसेना के म्यूजियम में रखा हुआ है। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं कल सुबह विश्व भारती में। बीती रात सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को हराकर दूसरी बार अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले से पहले भारत की सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ महिला युगल का खिताब जीता। लिएंडर पेस ने भी हिंगिस के साथ मिश्रित युगल का खिताब जीता। कैसी रही इन चैंपियनों की जीत की राह, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन तमाम तरह के उलटफेर और चमत्कार से भरा हुआ रहा। एक महिला खिलाड़ी इटली की फ्लाविया पेनेटा, जो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम की चैंपियन बनी, लेकिन ट्रॉफी संभालने के साथ ही टेनिस को अलविदा भी कह दिया। पुरुष एकल वर्ग में जिस खिलाड़ी को दो साल पहले टेनिस के पंडित बिल्कुल चूका हुआ मान रहे थे, यानी रॉजर फेडरर, अब वो भले ही चैंपियन नहीं बने लेकिन जोकोविच को कड़ी टक्कर जरूर दी। लेकिन असली जलवा रहा भारत के सदाबहार खिलाड़ियों लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा का, जिन्होंने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर पुरुष और मिश्रित युगल के खिताब अपने नाम किए। स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और भारत की सानिया मिर्जा इसी साल अपनी जोड़ी बनाकर खेले और देखते ही देखते ये जोड़ी दुनिया की नंबर एक जोड़ी भी बन गई। इस जोड़ी ने विंबलडन का खिताब भी जीता और अमरीकी ओपन में तो इन्हें कोई तगड़ी चुनौती भी नहीं मिली। फाइनल भी इन्होंने जैसे खेल खेल में अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की कैसी डेलाकुआ और कजाकिस्तान की यारोस्लावा श्वेदेवा को सानिया और हिंगिस ने 6-3, 6-3 से हराया। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जीत का राज बताते हुए भारत के पूर्व डेविस कप कोच अख्तर अली कहते हैं,
मार्टिना हिंगिस मोर रिलैक्स, बेटर डबल्स प्लेयर, स्पेशली लेफ्ट कोर्ट से वो अच्छा क्रॉस करती है और जितने बड़े पॉइंट होते हैं लेफ्ट कोर्ट में खेलता है 40-30, 30-40, 15-30, इसलिए इनकी जोड़ी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है एंड आई एम श्योर दे वो लोग करते रहेंगे।
मार्टिना हिंगिस साल 1997 में एकल वर्ग में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी रह चुकी है। ये उनका 11वां महिला युगल खिताब रहा। हिंगिस की जोड़ी मिश्रित युगल में भारत के लिएंडर पेस से भी खूब जमी और ऐसी जमी कि उन्होंने अमरीकी ओपन के रूप में साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता। फाइनल में जोड़ी ने अमरीका के सैम क्वेरी और बेथानी मार्टिक सैंड्स को 6-4, 3-6, 10-7 से हराया। लिएंडर पेस का मानना है कि वो हिंगिस के साथ खेलते हुए खुद को सहज महसूस करते हैं।
हाँ, इस साल मिक्स डबल्स बहुत अच्छा रहा। हमारा पार्टनर मार्टिना हिंगिस बहुत मशहूर खिलाड़ी है। हम लोग का जोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस जोड़ी में और बहुत मजा आता है मार्टिना के साथ खेलते वक्त।
पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में रॉजर फेडरर को कड़े संघर्ष के बाद 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 से हराया। भारत के पूर्व डेविस कप कोच अख्तर अली इस मुकाबले को लेकर कहते हैं,
बहुत क्लोज मैच था ये। इतने टाइम मौका मिला है फेडरर को, वो कन्वर्ट नहीं कर सके बड़े पॉइंट को एंड दिस इज वेयर दे वी लॉस्ट मैच। बट एक बात बहुत अच्छी है, हमने देखा रॉजर फेडरर ने काफी नेट पर आ रहे हैं, पॉइंट फिनिश कर रहे हैं।
खेल बदला फेडरर ने लेकिन खिताब जीता जोकोविच ने, जो इससे पहले विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसी साल जीत चुके हैं।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता हुआ। भाजपा 160, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 और जीतन अम्माझी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई यूरोपीय देश सीमा पर नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। मिस्र में गलती से चरमपंथी समझकर मार दिए गए 12 पर्यटकों में मैक्सिको के नागरिक की मौत पर मैक्सिको ने गुस्सा जताया। बताया, बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने, रेहान फजल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।